बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 1 सितंबर, दिन शनिवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की। क्या आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना करना सही है? कितनी समानता और कितना अंतर है दोनों में? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। फलस्तीनी शरणार्थियों को सहायता मुहैया कराने वाली संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों से सभी फंडिंग वापस लेने के अमरीकी फैसले की आलोचना की जा रही है। इस बात की आशंका की जा रही है कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने इस कदम को फलस्तीनी लोगों के खिलाफ खुला हमला बताया है। गजा के नियंत्रण वाले लड़ाके समूह हमास ने कहा कि यह फैसला शरणार्थियों के वापसी के अधिकार को खत्म कर देगा। फलस्तीनी लिबरेशन संगठन की कार्यकारी समिति के सदस्य हन्नान अशरवी ने इसे दंडात्मक कार्यवाही बताया है।
It's a cruel, calculated way of punishing the Palestinians because we did not surrender.
फलस्तीनियों को सजा देने का ये एक क्रूर तरीका है, क्योंकि हमने इसराइल के आगे समर्पण नहीं किया और हमने अमरीकी हुक्म को नहीं माना। ये दुनिया को ये बताने का तरीका है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, अगर फलस्तीनियों के उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम फलस्तीनियों को और दंडित करेंगे। वे इसराइल को दे रहे रकम में $38 अरब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे पीड़ितों को $20 करोड़ दे रहे थे। ये थे फलस्तीनी लिबरेशन संगठन की नेता हन्नान अशरवी के शब्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में डाक विभाग के पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया, जिसका नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है। ये पोस्ट पेमेंट्स बैंक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उद्घाटन के दौरान भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व यूपीए सरकार पर बैंकिंग सेक्टर में गलत तरीके से कर्ज देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नामदारों द्वारा दिए गए कर्ज को वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान की कानून व्यवस्था में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। आज ताहिरा सफदर ने क्वेटा में बलूचिस्तान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। उन्होंने 1982 में भी इतिहास रचा था, जब वो इस प्रांत की पहली सिविल जज बनी थी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान के हाईकोर्ट में केवल 5% महिलाएँ हैं और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान ऐसा इकलौता देश है जिसके सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला जज नहीं है। वहीं पाकिस्तान से ही आ रही कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि नई सरकार ने प्रधानमंत्री निवास से जुड़ी महंगी कारों की बोली लगाने का फैसला किया है। ये पैसे बचाने की कवायद के तौर पर किया जा रहा है। उनका कहना है कि BMW और मर्सिडीज बेंज जैसी 33 गाड़ियों की इस महीने सार्वजनिक बोली लगाई जाएगी। इमरान खान की सरकार पाकिस्तान के बढ़ते घाटे को कम करने के लिए कई कड़े कदम उठा रही है। हालांकि हाल ही में इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर से अपने घर से प्रधानमंत्री कार्यालय जाने पर इमरान खान की आलोचना की गई थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पूर्वी जर्मनी शहर कैमनिट्स की सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की जा रही है। यहां पर कई विरोध प्रदर्शन की योजना है। धुर दक्षिणपंथी और प्रवासी विरोधी समूहों ने एक मृत व्यक्ति की याद में मौन मार्च निकालने की योजना बनाई है। इस शख्स को कथित तौर पर 2 प्रवासियों ने मार डाला था। इससे पहले हुए 3 प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। आर्थिक मामलों के मंत्री पीटर अलमायर ने कहा है, लोकतंत्र में प्रदर्शन आम बात है, लेकिन हम कैमनिट्स में अधिक हिंसा देख चुके हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं शर्म महसूस करता हूं जब मैं देखता हूं कि यह हिंसा आम लोगों, प्रवासी लोगों के खिलाफ भड़काई जा रही है। ये थे जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री पीटर अलमायर के शब्द। स्वघोषित डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के नेता अलेक्जेंडर ज़ाखारचेंको की हत्या के बाद रूसी विदेश मंत्री सरगेई लैवरोफ ने पूर्वी यूक्रेन के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग की बात को नकार दिया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। इंडिया बोल में आज का विषय निकल कर आया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान से जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है।
When the Congress party comes to power or the Samajwadi comes to power or the BSP comes to power or the DMK comes to power, they don't try to attack and capture India's institution. And it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. I would compare it.
राहुल गांधी कह रहे थे कि जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा या डीएमके सत्ता में आते हैं तो वो भारत की संस्थाओं पर हमला और उन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन भारत में अब एक विचारधारा हर जगह कब्जा करने की कोशिश कर रही है। मैं इसकी तुलना अरब जगत में मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से करता हूँ। एक विचारधारा बाकी सभी विचारधाराओं को खत्म कर देना चाहती है। ये थे राहुल गांधी के शब्द। आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड, इन दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, और सवाल ये भी कि इन दोनों की तुलना कहाँ तक सही है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
और स्वागत हमारे उन तमाम श्रोताओं का जो हमें इस समय रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। टोल फ्री नंबर नोट कीजिए 1811 7000 और 1811 7001। इससे पहले कि श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करें, मधुसूदन जी हमारे सुनने वालों को बताएं कि जो तुलना हुई है आरएसएस की मुस्लिम ब्रदरहुड से, ये मुस्लिम ब्रदरहुड दरअसल है क्या?
देखिए, ये इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, जबकि आरएसएस की स्थापना को भी राहुल गांधी ने ये कहा है कि आरएसएस की स्थापना और मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना दोनों की 1925 में हुई, जो कि गलत था। एक तो एक ये भ्रांति मिटा देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह ये हिंदुओं का संगठन है और ये चाहता है कि भारत में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो नारा दिया गया था, जिस तरह से भारत का झंडा जो है वो तिरंगा नहीं होना चाहिए, भगवा झंडा होना चाहिए, भारत का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए बल्कि हिंदुस्तान होना चाहिए, भारत में जो है सिर्फ जो हिंदू हैं उनको राज करने का अधिकार होना चाहिए और दूसरे लोगों को यहाँ चूंकि वो रहते हैं उनको रहने दिया रहना, वो रहें और उनकी हम पूरी तरह से उनकी बचाव करें, उनकी रक्षा करें, लेकिन उनको कोई राजनीति में और दूसरी जगह पर कोई उस तरह से महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जैसा कि हिंदुओं को मिलना चाहिए। ये बेसिक अवधारणा उस समय थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर डिबेट्स में भी जाकर आप देखें तो ये पता चलेगा कि किस तरह की मांगें ये लोग उस समय करते थे और तमाम लोगों के बीच ये पत्र विवाद चला था कि किस किस तरह की मांगें। वंदे मातरम का इन्होंने बहुत जोर दिया, वंदे मातरम का, उसको लेकर तमाम बहसें उस समय हुई। रविन्द्रनाथ ठाकुर को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने उन्हें कहना पड़ा कि ये वंदे मातरम जो हमने अपने राष्ट्रगान के रूप में रखा है ये बिल्कुल अलग चीज़ है और वंदे मातरम गीत जो कि आनंद मठ में आता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जहाँ तक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात है, इसकी स्थापना एक स्कूल शिक्षक ने की थी जो चाहता था कि सुन्नी जो हैं, सुन्नी और शियाओं में झगड़ा शुरू से रहा है और सुन्नी आपको पवित्रता का और मोहम्मद साहब के वंशावली का, उनके सही वंशज, उनके सही अनुगामी, उनके सही कहना चाहिए शिष्य मानते हैं, वो चाहते थे कि उन्हीं की बनाए हुए जो नियम हैं, शरीयत के जो नियम हैं वो लागू किए जाएं। शुरू में ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट था और एक तरह का शैक्षणिक आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी इसने अपनी आतंकवादी पृष्ठभूमि, अपनी आतंकवादी सरोकार दिखाने शुरू कर दिए थे।
ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है और आरएसएस जो भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के काम करने के तरीके में क्या कोई समानता आप देखते हैं? इस सवाल के जवाब के साथ हम लौटेंगे आपके पास मधुसूदन जी, पहले कुछ श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। हेलो
जी सर, नमस्कार।
जी नमस्ते
जी सर, मैं यूपी जिला फरखाबाद से फहीमुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा हूँ।
सिद्दीकी साहब बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात।
और मैं बीबीसी का अचला शर्मा और ममता गुप्ता के जमाने का सोता हूँ।
लेकिन आप चिट्ठियाँ नहीं लिखते हैं सिद्दीकी साहब?
हेलो जी, मैं मधुसूदन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक आतंकवाद के संगठन के रूप में काम कर रहा है, तो मैं मधुसूदन जी से साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस भी तो एक आतंकवाद ही संगठन है, जिसके कर्नल पुरोहित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अजमेर मालेगांव जैसे बम ब्लास्ट दंगों में मुलव्वस थे।
उससे जो सवाल
तो एक आतंकवाद दहशतगर्द ही है।
जी सिद्दीकी साहब, आपका सवाल कार्यक्रम में शामिल हुआ और मधुसूदन जी इस पर और रोशनी डाल रहे हैं।
देखिए, मुझसे पूछा गया था कि ये कैसा संगठन है। आप देखिए, जो नासिर थे, नासिर की हत्या में इनका हाथ था, मुस्लिम ब्रदरहुड का। दूसरे पड़ोसी देशों में इन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया, इसलिए इसको लीगलाइज नहीं था। मिस्र तक के अंतर्गत ये वैध संगठन नहीं था। इसको तो मोरसी ने 2011 में आने के बाद इसको वैध संगठन बनाया, और वो मोरसी का शासन भी एक डेढ़ साल तक, दो साल तक चला, और इसके बाद फिर इसको जो है बैन कर दिया गया। और ना केवल दूसरे देशों ने, खुद मिस्र ने भी इसको बैन किया हुआ है।
सिद्दीकी साहब के बाद अगले श्रोता के पास चलते हैं।
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
सोनी साहब नमस्कार, मैं पठान खान गज्जू बोल रहा हूँ, खितनौरिया।
जी नमस्ते गज्जू साहब, कैसे हैं आप?
अच्छा,
बताएं क्या सोचते हैं इस विषय पर आप?
मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था राजनीतिक प्रेरित था, लेकिन ब्रदरहुड और जो अपने जो ये हिंदू परिस्थिति वाली जो ये पार्टी है, इनमें ज्यादातर तो फर्क कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये हिंदुओं का देश बनाना चाहते हैं, वो इस्लामी देश बनाना चाहते हैं, दोनों बराबर ही हैं। ज्यादातर मुझे फर्क तो कुछ नहीं लगता है।
बहुत अच्छा लगा गज्जू साहब आपसे बात करके, आगे भी फोन लगाइएगा। ये आपने भी सुना मधुसूदन जी की, वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इस्लाम के आधार पर शासन करना चाहते हैं, और ये हिंदुओं के शासन की बात कर रहे हैं। मैं पुराने सवाल पर लौट रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस के जो काम करने के तरीके हैं, उसमें कोई समानता देखते हैं आप?
नहीं, इसमें समानता, बहुत ज़्यादा समानता तो नहीं देखी जानी चाहिए। देखिए, वो संगठन जो है वो एक बहुत ही डिसिप्लिन संगठन है, आरएसएस। इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही डिसिप्लिन संगठन के रूप में हुई थी, किसकी? मुस्लिम ब्रदरहुड की। ये समानता आप कह सकते हैं, और इसका काफ़ी, इसने नेशनल मूवमेंट में भी काम किया वहाँ पर, आरएसएस का, जबकि नेशनल मूवमेंट में कोई योगदान नहीं था, हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कोई योगदान नहीं था।
और आरएसएस पे प्रतिबंध भी लगा है महात्मा गांधी की हत्या के बाद,
उसके बाद प्रतिबंध लगा।
मुस्लिम ब्रदरहुड पे पाबंदी की बात कर रहे हैं?
हाँ, मुस्लिम उस पर तो थोड़े समय के लिए प्रतिबंध लगा, बाद में हटा दिया गया प्रतिबंध। ये खुलेआम ये नहीं कहता कि हम राजनीति में भाग लेंगे, लेकिन पिछवाड़ से इन्होंने दरवाजा खोल रखा है।
आरएसएस भी कहां खुलेआम कहता है राजनीति में?
नहीं नहीं, ये तो कहता था कि हमें राजनीति में भी करनी है, और बाद में इन्होंने जस्टिस पार्टी भी बनाई मोरसी के जमाने में।
नहीं, मोरसी का तो ठीक है, ये जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस ये भी तो एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर ही जाना जाता
कहता था, लेकिन अब जो है, अब तो खुलेआम आरएसएस से लोग आ रहे हैं यहाँ आके, वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी बन रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहा है। ये अटल जी के जमाने में भी था, लेकिन अब तो खुला खेल है।
हालांकि मिस्र में भी मुस्लिम ब्रदरहुड अब फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाने लगा है, मोरसी की पार्टी है।
हाँ, जाना जाने लगा है, लेकिन अब वो वहाँ पर मिलिट्री शासन है, और वो उस तरह का उसका प्रभाव नहीं रहा है जो, क्योंकि जितने क्रिप्टिक ये थे, ईसाई थे ये, कम्युनिस्ट थे ये, महिलाएं थीं ये सब लोग, और जो लिबरल्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, इन्होंने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया इनके खिलाफ। लेकिन मोरसी को एक टैक्टिकल सपोर्ट थी सेना की भी। जब सेना ने देखा कि उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो उन्होंने इसको अलग किया, मुस्लिम ब्रदरहुड को, और खुद सैन्य वहाँ का जो है सीसी, वो सीसी नाम था उनका, वो जो है बन वहाँ के बागडोर उन्होंने
जी। कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं? जी
हाँ नमस्कार, कहना है क्या जो राहुल गांधी ने माने कहे हैं कि जो माने मुस्लिम आतंकवाद है माने अथी आरएस आतंकवाद है, तो ये उनका कहना तो बिल्कुल एकदम माने बहुत भारी गलत है।
पहले ये पहले ये बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ हम बोल रहे हैं, मेरा नाम है कन्हैया चौधरी और मैं मधुबनी जिला के बेनीपति थाना के और चांदपुरा गांव से बोल रहे हैं।
कन्हैया जी, पहले तो मैं आपको एक तथ्यात्मक त्रुटि को दुरुस्त करने का आग्रह करूंगा कि राहुल हाँ। गांधी ने इस तरह जिन जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द नहीं कहे हैं, उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा हाँ। और आरएसएस की विचारधारा में कुछ समानताएं बताई हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये बताएं। लगता है मधुबनी वाले कन्हैया जी से हमारा संपर्क टूट गया है, अगले श्रोता के पास चलते हैं। लगता है ये आवाज आकर भी हम तक पहुंचते पहुंचते कट गई। अगले श्रोता के पास हम चलेंगे, उससे पहले हम वापस लौट रहे हैं मधुसूदन जी के पास। मधुसूदन जी, जनाधार एक बहुत बड़ी चीज होती है, समर्थन, स्वीकृति, इस मापदंड पर यदि हम देखें तो मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस, मिस्र और भारत में जो दोनों अलग अलग संगठन है, कैसे देखते हैं आप, क्या फर्क, क्या समानता नजर आती है?
देखिए, एक बात जरूर है कि चाहे उसकी नीतियां कुछ भी हों, उनकी हम आलोचना भी करेंगे और करनी भी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से आरएसएस ने अपना जनाधार बहुत बढ़ाया है और इसके पीछे उनका जो शिक्षा जगत में उनका काम है, जिस तरह से उन्होंने जगह जगह शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर खोले हैं, दूसरी जगह काम किए हैं और जो रचनात्मक काम वो करते रहते हैं तमाम तरह के, वो उस तरह का योगदान।
क्या जिस तरह से आरएसएस ने अपना जनाधार बढ़ाया है, क्या वही तरीके मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी आजमाए हैं?
शुरू में उनके तरीके यही थे, शुरू में उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया,
बाद में तरीके बदल गए,
बाद में वो जो है उसमें कुछ डिसग्रंटेड एलिमेंट शामिल हो गए और उसमें जो उदारवादी मुसलमान थे वो किनारे कर दिए।
क्या आरएसएस में भी इस तरह का कुछ बदलाव आया है?
आरएसएस में कुल मिला के, अगर आरएसएस खुद मिला के ध्रुव दक्षिणपंथी संगठन है, लेकिन ध्रुव दक्षिणपंथी को भी अगर इस आधार पर वामपंथी और उस तरह से ध्रुव दक्षिणपंथी की व्याख्या करूं, मध्यम मार्ग की शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो मैं कहूंगा कि आरएसएस में जो ये जो बहुत कट्टरपन जिनमें है, वो लोग जो है वो उनका वर्चस्व नहीं है।
कट्टरपंथ किस में ज़्यादा है, आरएसएस में या मुस्लिम ब्रदरहुड में?
नहीं, निश्चित रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड में ज़्यादा कट्टरपन है और उसके लिए वो हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इधर यहाँ भी इनके कुछ जो मिले जुले, इनके जो कुछ क्या कहते हैं अनुषांगिक संगठन थे आरएसएस के, उसके लोगों पर भी कुछ इस तरह के मुकदमे चले, या उनके सिंपथाइजर जो थे, अभी भी चार पांच लोगों को पकड़ा हुआ है जो इसमें जब जो भारत के बुद्धिजीवियों को पानसरे और इन सब लोगों की हत्या के सिलसिले में पकड़ा हुआ है उनको भी। तो लेकिन ऐसे लोगों की, मतलब ऐसे लोगों का वर्चस्व नहीं है आरएसएस में, लेकिन चूंकि नेता चुप रहते हैं इसलिए ऐसे लोग मतलब खूब बढ़ चढ़ कर बोलते हैं।
मधुसूदन जी शीशे के उस पार बैठकर कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं मेरे दोस्त कपिल देव सिंह, इशारा कर रहे हैं बार बार कि दो श्रोता बहुत देर से लाइन पर हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। पहले कौन श्रोता है हमारे साथ?
हेलो, मैं अशोक खानोरे गणेशवाड़ी तालुका जिला महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
खान साहब, कहाँ से बोल रहे हैं महाराष्ट्र में आप?
कोल्हापुर से।
कोल्हापुर से खान साहब, ये बताइए कोल्हापुर में आप हमारे कार्यक्रम कैसे सुनते हैं?
रेडियो पर सुनते हैं ना।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बताइए खान साहब कि आपको लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस में कोई समानता या कोई अंतर है, या ये तुलना करना ही बेकार है?
यह तुलना करना बेकार है, क्योंकि आज इतना बड़ा हिंदुस्तान में इतना बड़ा आक्रमण हुआ सभी, और हिंदुस्तान जो धर्म था वो खत्म हो रहा है ना, अब हिंदू धर्म करने के लिए आरएसएस के साथ मिलकर ही हिंदू धर्म को, और ये जो झगड़े लगा रहे हैं हिंदू और मुसलमान में, जो नक्सलवादी को भी पैसा देकर आदमी गरीब हो रहा है, इसलिए पैसा लेकर वो दूसरों को मारने के लिए अपने आप को ये कर रहा है, तो इसे खत्म करने के लिए गांधी जी का तत्व का अभी पालन करना होगा। और ये जो झगड़े हो रहे हैं उसका नक्सलवादी का पूरा खत्म कर कर उसे हटाना होगा और गांधी जी का ये तत्व को ही अपनाना होगा।
महाराष्ट्र कोल्हापुर से श्रोता खान साहब थे हमारे, ये थोड़ा और विषय से थोड़ा लगता है कुछ भटक से रहे थे। अगले श्रोता के पास चलते हैं हम।
मैं मोहम्मद शफी जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ जी।
जी शफी साहब स्वागत है आपका। आपको लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा और आरएसएस में कोई समानता है, कोई फर्क है?
देखो सर, बात यह है कि वो भी एक इस्लामी ममालक बनाना चाहते हैं, इस्लामी एक तरीका बनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें और इनमें ये फर्क है, वो जुल्म कम करते हैं, अत्याचार कम करते हैं, वो अत्याचार जो है कम करते हैं, बेशक वो बनाते जरूर हैं, लेकिन जो आरएसएस है इसका एजेंडा ही यही है कि मुस्लिम को खत्म कर दो, सिख को खत्म कर दो, अन्य जाति जितनी है इनको खत्म कर दो, ऑनली जो है हिंदू होना चाहिए और वही राज करे, वही बंटवारा करे, वही सब काम करे, उसी का राज हो, बाकी जो है इनको खत्म करके जन्नत में पहुंचा दो। लेकिन मुस्लिम ब्रदर जो है वो ये नहीं करता कि जो बाकी जाति हैं उनके साथ पड़ोसी के साथ भी जुल्म करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वो कानून एक ऐसा शरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एक तरीका है उनका, लेकिन इनका तरीका जो है कट्टर।
जी मोहम्मद शफी साहब, मधुसूदन जी आपने सुना ये कह रहे थे, ये वही बात कह रहे हैं जो मोटे तौर पर राहुल गांधी ने कही थी कि एक विचारधारा सारी विचारधाराओं को खत्म कर देना चाहती है। इसी संदर्भ में उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की थी। आपको लगता है कि क्या मुस्लिम ब्रदरहुड में ऐसा हुआ है कि उसने बाकी तमाम विचारधाराओं को खत्म कर दिया है?
उसने अगर वो खत्म नहीं कर सकी तो उसने बंदूक की नोक पर उसे खत्म करने की कोशिश की। यहाँ जो है ये बात सही है कि ये दूसरी विचारधाराओं का आदर करने वाले लोग नहीं हैं, ये मैंने जैसा शुरू में बताया था, इनका आज़ादी के तत्काल बाद के इनके जो इनके मुखपत्रों में छपे हुए जो एडिटोरियल्स हैं वो अगर आप देखिए तो वो सब ये बताते हैं कि हिंदुओं का ही देश बने ही है। लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बड़े बनाने में इतने बड़े बड़े दिमाग लगे और उन्होंने एक ऐसा देश बनाना चाहा जहां डाइवर्सिटी हो, विभिन्न भाषाएं फलें फूलें, विभिन्न जातियाँ फलें फूलें, विभिन्न धर्म फलें फूलें और उनके उभर एक तरह का सहयोग और समन्वय रहे उनमें आपस में। और 70 साल तक पीछे इस चीज़ को चलाया है बड़ी सफलतापूर्वक, बीच बीच में थोड़ी अतियाँ हुई हैं लेकिन कुल मिला के ठीक चला है। अब ये इन्होंने कोशिश एकांगी दृष्टि है ये मेरी राय में, जैसे ब्रदरहुड की दृष्टि जो है वो एकांगी है वैसे इनकी दृष्टि भी एकांगी है।
शिया सुन्नी के झगड़े तो वहाँ पर भी हैं,
शिया सुन्नी के झगड़े वहाँ पर भी हैं, मुसलमान होते हुए भी दोनों ही मुसलमान हैं
तो ना? पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड तो वो भी नहीं हुआ,
तो मुस्लिम ब्रदरहुड तो वो तो है ही सुन्नियों का संगठन, वो शियाज का वहाँ कोई आदर नहीं है। वो जो 6 देशों में शुरू में उनका जो बढ़त हासिल हुई थी उनको या जहाँ उनका प्रभाव था वो सब ज़्यादातर ऐसे देश थे जहाँ पर सुन्नी वर्चस्व था।
और यहाँ आरएसएस भी मुख्य रूप से संगठन में शक्ति है जब वो कहता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये निहित होता है कि वो संगठन और शक्ति हिंदुओं के हाथ में है।
नहीं वो तो उनका नारा ही है, ये शुरू से ही रहा है कि मतलब हिंदुओं का ही देश होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र जो है उसको कहते नहीं हैं अब, लेकिन हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत पे ही खड़ा हुआ है। और मतलब इनके पुरोधा वीर सावरकर, उन्होंने पहले हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था, जिन्ना ने तो बाद में दिया मुस्लिम राष्ट्र का नारा, जब 1937 के विधानसभा चुनावों में जब इन्होंने उनके लिए अलग वोटिंग प्रणाली रही, अलग निर्वाचन क्षेत्र रहे और उनको सरकार में आने नहीं दिया, उन ये वो मांग कर रहे थे कि भाई किसी ना किसी रूप में हमें भी सरकार में शामिल कर लो, तो जब उसको सरकार में शामिल करने से मना कर दिया गया खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो उसके प्रतिरोध में और आग भड़की और कुछ हिंदूवादी थे ही जो इस तरह की बातें कर रहे थे। कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे, ये नहीं कि कोई बाहर थे, कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे।
एक और श्रोता को शामिल करते हैं इस समय। कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
हेलो
जी,
आदाब।
जी आदाब।
میں بلاور حسین قادری میرا بات جس میں راجستھان سے عرض کر رہا ہوں.
جی جی قادری صاحب رکھیں اپنی بات.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں حقیقت چھپائے چھپ نہیں سکتی بناوٹی کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. سونی جی مسئلہ یہ ہے جو مسلم بردرہڈ ہے وہ سلفی وہابی آتنکواد ہے, اور جو آر ایس ایس ہے مجھے تو بڑی اچرج ہوتا ہے مدھوسودن جی آنند جیسے بدھی جیوی ہندوستان کی مشہور اور معروف ہستی اگر یہ کہے کہ آر ایس ایس کے بارے میں یین کین کرے, آر ایس ایس جو ہے چاہے کوئی چھپا یا کچھ بھی کرے لیکن آر ایس ایس آتنکوادی سنگٹھن ہے, چاہے مہاتما گاندھی کی ہتیا ہو, چاہے بابری مسجد سعادت کا مسئلہ ہو, قلم کے سپاہیوں کی ہتیا ہو, ان کو موقع ہی نہیں ملا, پہلی بار موقع ملا ہے. جو وشو ہندو پریشد کے ادھیکش تھے اشوک سنگھل, انہوں نے کہا تھا کہ 1200 سال کے بعد پہلی بار ہندوستان میں کوئی ہندو گورنمنٹ بنی, تو اس سے پہلے والی گورنمنٹ کیا تھی؟ ہندو گورنمنٹ نہیں تھی. آر ایس ایس کو پہلی بار گورنمنٹ میں پہلی بار ان کو حکومت آئی ہے تو انہوں نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کیا ہے. مسلم بردرہڈ ہو چاہے پھانسی واد ہو چاہے نازی واد ہو چاہے آر ایس ایس ہو, یہ ایک ہی پریواچی ہے, ایک ہی سکے کے دو پہلو, اس میں کوئی فرق نہیں.
دلاور حسین قادری صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سکے کے پہلو ہیں, یہ سکے کے پہلو. ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال, وہاں سے میں یہ سوال لے رہا ہوں کہ کیا آر ایس ایس کو مسلم بردرہڈ کا ہندو سنسکرن کہا جا سکتا ہے؟
نہیں, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کو اس کا ہندو سنسکرن کہا جائے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہندو راشٹر بنانا چاہتے تھے اور 70 سال کے انوبھاؤں نے انہیں بھی سکھایا ہے کہ ہندو راشٹر کی پریکلپنا جو ہے بے معنی ہے, یہ نہیں بن سکتا. بھارت میں جس میں سب کانٹیننٹ میں اتنے مسلمان نہیں ہوں گے جتنے بھارت میں ہیں, کسی دیش ایک میں نہیں ہوں گے جتنے کہ بھارت میں ہیں, آپ ان کا کیا کریں گے؟ سکھ ہیں, جین ہیں, عیسائی ہیں, پھر جاتیاں اپ جاتیاں ہیں, تو وہ تو بن ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہندو راشٹر بن سکے. لیکن ہاں یہ اس سے باز نہیں آتے. مجھ سے پہلے جو میرے مسلم بھائی بول رہے تھے, میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کی جو 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 مطلب کسی رائے کے خلاف اگر کوئی رائے رکھتا ہے تو یہ دوسری رائے کو برداشت نہیں کرتے ہیں, یہ بات صحیح ہے, اور اس میں آکرامک بھی ہو جاتے ہیں, یہ بات بھی صحیح ہے. لیکن جس طرح سے بروٹل طریقے اپنا کے سماج میں کرانتی لانے کی کوشش, بلکہ رکت رنجت کرانتی لانے کی کوشش مسلم بردرہڈ نے کی ہے, ویسا چانس آر ایس ایس کو ابھی نہیں ملا ہے اور نہ ہی مل سکے گا. کیونکہ اگر آپ 5 آدمی یہاں گرفتار کرتے ہیں شکلم کے سپاہیوں کو تو دیکھیے کیسا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے.
ایک اور شروتا کو کاریکرم میں شامل کرتے ہیں, آخری شروتا ہمارے کون ہے؟
ہیلو
جی
سر, میں میوات سے گاؤں رہنا سے اسرائیل بول رہا ہوں.
جی اسرائیل صاحب کہیں.
سر میں خیر میرا پہلی بار فون لگا ہے, پچھ تو کافی دنوں سے رہا ہوں جب سے آپ کی سروس شروع ہوئی ہے انڈیا بول, لیکن پہلی بار لگا ہے. لیکن سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے مدھوسودن جی جو بھائی بیٹھے ہیں آپ کے پاس, یہ بار 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 آر ایس ایس کی وہ ڈرے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں, جیسے ڈر کے یہ کھری بات کہہ نہیں رہے. حقیقت سر یہی ہے کہ دہشت گرد تنظیم ہے, دہشت گرد اسی سے کہتے ہیں جو لوگ دہشت پھیلاتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی
اسرائیل بھائی میں آپ کا فون ابھی یہیں پر سماپت کرنا چاہیں گے, بات چیت کو ویرام دیں گے, سمے کم بچا ہے, لیکن یہ منچ چرچا کا تھا, چرچا کھلی ہونی چاہیے اور چرچا ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. ایک آخری ٹپنی ہم آپ سے لے لیتے ہیں مدھوسودن جی, کیا دونوں کی تلنا کرنا اچت ہے براڈر سینس میں؟
میں یہی کہنا چاہوں گا, دیکھیے ووٹ کی راجنیتی کی خاطر آپ کو نیتا کو ڈراما پرفارم کرنا پڑتا ہے, ہر بار ڈرامہ کرنا کرتا ہے, جب وہ بھاشن دینے جاتا ہے تو کئی طرح کا ڈرامہ, کئی طرح کی اتیاں اس کو دکھانی پڑتی ہیں, تو ایک طرح کے اتیواد کے شکار راہل گاندھی ضرور ہوئے ہیں. لیکن یہ تلنا کہ مسلم سنگٹھن مسلم بردرہڈ اور آر ایس ایس کو ایک دھراتل پہ رکھا جا سکتا ہے, میں کم سے کم آر ایس ایس کو اتنا گریس پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ وہ بھی اس سیما تک یہاں وہ خطرہ نہیں بڑھا ہے, لیکن ہاں اگر بڑھے گا تو یہاں کے جیسے 5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے 500 لوگ اور 1000 لوگ اور 5000 لوگ اور 5 لاکھ اور 5 کروڑ لوگ کھڑے ہو جائیں گے.
बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी, आप स्टूडियो में आए, चर्चा को सार्थक बनाया। विराम देंगे चर्चा को, विदा लेंगे आपसे। अगले हफ्ते फिर शनिवार आएगा, फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त।